शांति, ओम शांति। आज बाबा ने गीता का भगवान कैसे सिद्ध करो, गीता का भगवान शिव है न कि श्री कृष्ण, ये कैसे सिद्ध करो? क्योंकि सीधा अगर किसको पहले ये कह देंगे कि गीता का भगवान शिव है तो वो मानेंगे नहीं। तो कैसे सिद्ध करो, क्या युक्तियां हैं जिससे ये सिद्ध कर सकते हैं कि गीता का भगवान शिव है? सबसे पहली युक्ति कौन सी है? पहले तो परमात्मा का परिचय दो। परमात्मा का परिचय देने में भी ये नहीं कहो कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन कौन है परमात्मा ये सिद्ध करो। तो जब कौन है परमात्मा ये सिद्ध हो जाएगा तो फिर गीता का भगवान वही है, वो भी सिद्ध हो जाएगा। तो आज बाबा ने कई युक्तियां बताई है कैसे परमात्मा एक है, वही आकर अपना परिचय देते हैं, वही राजयोग सिखाते हैं, वही हमें देवता बनाते हैं, वही हमें पावन बनाते हैं। तो एक को सिद्ध करो, तो एक को सिद्ध करेंगे तो आपकी जीत हो जाएगी, तो गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तो कैसे सेवा करो वो भी बाबा ने बताया। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 11/7/2025 है। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। कैसे होगा नाम बाला? जब हम पहले बाप का सही परिचय सबको देंगे और फिर कैसे वही गीता का भगवान है सिद्ध कर सकेंगे, तभी बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, चारों पांचों ही युगों में चक्र लगाया है, उसकी रसम भक्ति में चल रही है, वो कौन सी? अभी भी उसकी रसम भक्ति में चलती है ना, चक्र लगाते हैं ना मंदिर के भी चारों ओर, और परिक्रमा भी कराते हैं शास्त्रों की या मूर्तियों की। तो बाबा कहते हैं कि तो तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रसम भक्ति में चल रही है, वो कौन सी? उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया वो फिर भी, हाँ वो फिर क्या करते हैं, वो फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर परिक्रमा लगा करके फिर घर में आकर सुला देते हैं। तो तुम भी ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो, इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है, ये भी रसम है। फिर ब्राह्मण बनते हैं, फिर घर जाते हैं तो कुछ समय तो सोएंगे ना वहां, जब फिर से हमारा पाठ हो सृष्टि पर, तो ये भी रसम है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है, ऊंचे से ऊंचा पिता वो एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है या अनेक है, हाँ कई पूछते हैं ना परमात्मा ही कितने हैं, एक परमात्मा है या अनेक परमात्मा है, पूछने की जरूरत नहीं है, पता है परमात्मा एक है, तो वो एक कौन है उसका परिचय दो। पूछना नहीं है कि बाप एक है वा अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। अगर हम उनसे कहेंगे कि भाई भगवान कितने हैं, तो कहेंगे अनेक भगवान है। हाँ, ये भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान। आज कितने अपने आप को ही भगवान कहलाते हैं। तो भगवान कितने हैं ये पूछना नहीं है। अगर पूछेंगे तो कहेंगे अनेक। लेकिन उनको कहना है कि बाप रचयिता, वो गॉड फादर एक है, वो सब आत्माओं का बाप है। पहले ये सिद्ध करना है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए क्या कि वो बिंदी है। चलो बाप का परिचय दिया तो उसमें ये नहीं कहना है वो तो बिंदी है, वो भी नहीं समझेंगे बिंदी कैसे है। इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। तो पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा कोई गॉड ऐसे हाँ कहते नहीं है। लौकिक को थोड़ी कहेंगे खुदा गॉड है, तो वो एक ही परमात्मा जिसको कहते हैं। ये सब एक को ही याद करते हैं। तो पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि परमात्मा एक है। फिर क्या निश्चय कराओ कि वो फादर है तो स्वर्ग की रचना करने वाला है। अब पिता है तो उसे वर्षा मिलेगा, तो वो वर्षा देने वाला है। स्वर्ग की रचना करके हमें वो स्वर्ग का मालिक बनाता है। फिर ये सिद्ध करो। वो यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, फिर सिद्ध करो कि उसको फिर यहाँ आना पड़े, तभी तो वो अब स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। तो पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। वो यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने। और उसके लिए कैसे सिद्ध करें कि वो यहाँ आते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, इसके लिए शिव जयंती मनाते। शिव जयंती परमात्मा के अवतरण का यादगार है। ये भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचयिता भारत में ही स्वर्ग रचने आते। ऐसे नहीं किसी और खंड में जाएंगे स्वर्ग रचने, भारत में ही आते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवानु वाच है, भगवान बोले। हाँ, वाच करे माना बोले। तो भगवान गीता में भगवानु वाच है। तो पहले पहले तो ये निश्चय कराए, लिखा लेना चाहिए कि आप मान, हाँ कैसे आप मानेंगे कि हम परमात्मा तो एक है। फिर गीता में है, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। अब ये कौन कह सकता है? श्री कृष्ण तो कह नहीं सकता मैं तुमको राजयोग सिखाकर नर से नारायण बनाता हूँ। तो मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। अब ये कौन बना सकता है नर से नारायण? जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है और फिर वो हमें क्या देता है, हमें क्या बनाता है। फिर ये सब बातें समझानी पड़े। भगवान कौन है फिर ये भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। और फिर वो सिद्ध करना पड़े लक्ष्मी नारायण कैसे सतयुग के मालिक थे, पहला जन्म उनका, फिर वो 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उनके इतने जन्म तो हो न सके, 84 जन्म तो और धर्म वालों के हो न सके। तो पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। तो सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं है, चक्र का ज्ञान कोई सतयुग में नहीं सीखेंगे, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। हाँ, क्यों सतयुग में ये सीखते नहीं है चक्र का ज्ञान? क्योंकि उसमें तो यही आएगा ना, अगर चक्र का ज्ञान सीखे माना नीचे जाते हैं सतयुग से, त्रेता त्रेता से द्वापुर। अब ये सतयुग में सीखेंगे तो बाबा कहते वो सुखी उनका खत्म हो जाएगा कि फिर हमको त्रेता में जाना है फिर द्वापुर में जाना है। लेकिन तब सीखते हैं जब चढ़ती कला है, सतयुग में जाना है तब सीखते हैं। तो बाबा कहते हैं पीछे फिर तो सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे, पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, अब उनके इतने जन्म तो हो न सके, तो पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। अब ये सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं है, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है, जैसे अब आपके परिचय में क्या देना है, कई कहते ना अगर देते भी हैं तो क्या कहेंगे, अगर परमात्मा है तो हमको दिखाई क्यों नहीं देता है, तो फिर उनको क्या समझाओ, जैसे आत्मा भी तो देखने में नहीं आती है, कई आत्मा को मानते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं मानते हैं, तो बाबा कहते उनको कहो आत्मा को भी तो देखा नहीं जा सकता, आप अपने आप को देख सकते हो, शरीर का जो मुखड़ा है उसको भी कहाँ देख सकते हो, क्योंकि आंखें तो मुखड़े में ही है, मुख में ही है, तो आईना में देख सकती हो ना अपना मुखड़ा, तो आत्मा को भी इन आंखों से तो देख नहीं सकते लेकिन ज्ञान के दर्पण में देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है उसको समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, तो बुद्धि से समझते हैं, क्या समझते हैं परमात्मा के लिए कि वो हम आत्माओं का बाप है, उनको कहा ही जाता है परम आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा, वो सदैव पावन है, उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले पहले बाप एक है ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है वो भी सिद्ध हो जाएगा। तो तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है, वही एक सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम है, एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है, बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है, ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है, यहाँ कोई शास्त्र नहीं है, बाप आकर सारा राज समझाते हैं। तो पहले पहले तुम बच्चों को इस पर जीत पानी है, किस पर जीत पानी है, पहले तो बाबा कहते इसी पर जीत पानी है कि भगवान एक निराकार है न कि साकार, परम पिता परमात्मा शिव भगवानुवाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वो है, श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता, वो किसी को कह भी नहीं सकता है, क्या नहीं कह सकता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, छोटा बच्चा क्या कहेगा मैं तुम्हारा बाप हूँ, और क्या नहीं कह सकता है, वो ये भी नहीं कह सकता कि देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो, अब ये श्री कृष्ण कैसे कहेगा, क्योंकि वो खुद देह के धर्म में है, खुद देह में है, तो देह के धर्म छोड़ मुझे याद करो, ये वही कह सकता है जिसको अपनी देह नहीं है, तो वो किसको ये भी नहीं कह सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामी कम याद करो, श्री कृष्ण नहीं कह सकता, है तो बहुत सहज बात समझाने की, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में इतने पक्के हो गए हैं, फिर उनको कोई ये नई बात सुनाओ तो कई भड़कते हैं, कई फिर हंगामा भी करते हैं, आजकल शास्त्रों आदि शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर में ले आकर सुलाते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता से क्षत्रिय फिर वैश्य फिर शूद्र बनते हैं, ये चक्र लगाते हैं, चक्र के बदले वो फिर परिक्रमा दिखाकर दिलाकर घर में रखते हैं, उनों का एक मुकरर दिन होता है जिस दिन वो शास्त्र उठा करके परिक्रमा देते हैं या चित्रों को परिक्रमा दिलाते हैं, जब परिक्रमा दिलाते हैं एक दिन मुकरर रहता है, तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं परंतु शिव भगवानुवाच, पर ये कैसे सिद्ध करना है वो बाबा ने पहले बता दिया, शिव तो पुनर्जन्म रहित है, वो आते जरूर हैं, परंतु उनका जन्म कैसा है, आते हैं लेकिन उनका जन्म दिव्य है। तो दिव्य जन्म है उनका, भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, भागीरथ भाग्यशाली रथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं। जो नॉलेज भगवान में है वो और किसी में नहीं है, इसीलिए वही आकर के नॉलेज देते हैं। बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है, तो मुख्य बात है ही कौन सी, बाप का परिचय कैसे दें। वही गीता का भगवान है, ये तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं, तो तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई। भगवान कौन है और वो कैसे गीता का भगवान है, ये अगर इस बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाली, तुम्हारा वाह वाह होगा, जय जयकार होगा, बस तुमने जीत पाली। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हारा नाम इसी में बाला हुआ है ये सिद्ध करने से, अब इसमें कोई खिटखिट नहीं करेंगे। हाँ, परिचय दिया तो उसमें नहीं करेंगे खिटखिट, उसमें कोई खिटखिट नहीं करेंगे, ये बड़ी क्लियर बात है। तो बाप कहते हैं, फिर दूसरी बात, मैं सर्वव्यापी भी कैसे हो सकता हूँ, मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज देता हूँ, पुकारते भी हैं कि आओ आकर पावन बनाओ, तो रचयिता और रचना का ज्ञान सुनाओ। हाँ, पुकारते भी हैं। महिमा भी बाप की अलग, श्री कृष्ण की अलग है, ऐसे नहीं, क्या नहीं, दोनों की महिमा अलग अलग है, तो ऐसे नहीं कि शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्ण व नारायण बनते हैं। अब शिव बाबा आएगा वो तो पुनर्जन्म रहित है, कोई जन्मा है तो वो पर काया प्रवेश करेगा, श्री कृष्ण की आत्मा तो अपनी काया में आती है ना, वो कोई वो तो ऐसे नहीं कि एक ही बार आया और फिर चला गया, ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्ण व नारायण बनते हैं, नहीं, वो 84 जन्मों में आते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझने में लगी रहनी चाहिए। बाबा कई कहते ना, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बाबा कहते अगर ये ज्ञान की बातें ही रमण करो तो वो व्यर्थ बातें आएगी नहीं, पर ज्ञान की बातें रमण नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो व्यर्थ बात, इसकी बात उसकी बात, वही बुद्धि में आती है। तो बाबा कहते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता, भगवानों वाच है तो जरूर भगवान को फिर मुख चाहिए, भगवान वाच है, वाच करते हैं मानी बोलते हैं, तो फिर जरूर सिद्ध है कि उनको मुख चाहिए। भगवान तो है निराकार, आत्मा भी मुख बिगर बोले कैसे, आत्मा को भी मुख चाहिए शरीर का, तब तो वो बोले। तब कहते हैं, मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ, जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आता हूँ। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं श्री कृष्ण, वो तो बताते गीता में कि भगवान ने अर्जुन को ये कहा, मैं तुमको हम और तुम पहले भी मिले हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं, एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। अभी बहुत ऐसे है पर करते रहते हैं, हमारे कई सेंटर्स पर संत सम्मेलन करते रहते हैं, तो समझेंगे ना वहाँ के जो संत है उनको बुलाकर हम उनको समझाएंगे। नाम वाला हो जाएगा रचयिता बाप का, सबको मालूम पड़ जाएगा, फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो, इसलिए पहले पहले अलफ सिद्ध कर समझाओ। सीधा ही गीता का भगवान ने पहले अलफ सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। ये है सौभाग्यशाली रथ, कौन सा? ब्रह्मा बाबा का, जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? हाँ, भागीरथ भी कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, ब्रह्मा बाबा क्या है? श्री कृष्ण की आत्मा का ही रथ है, आत्मा वही है लेकिन वो अंतिम जन्म का रथ है, और श्री कृष्ण तो पहले जन्म का रथ है। तो श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वो खुद श्री कृष्ण तो नहीं है, शिव बाबा श्री कृष्ण नहीं है, पर श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म का जो रथ है उसमें आते हैं। वो खुद श्री कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। अभी जिसके तन में आते हैं भले वो पहला जन्म सतयुग का, पर अभी तो श्री कृष्ण नहीं है ना, तो इसीलिए बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स ऑक्यूपेशन आदि बदलते रहते हैं। पहला जन्म श्री कृष्ण का, फिर दूसरा जन्म श्री कृष्ण थोड़ी होगा, फिर और नाम रूप होगा, फिर तीसरा और नाम रूप, और 84वां अंतिम जन्म में तो बिल्कुल अलग नाम रूप है। तो बाबा कहते हैं हर जन्म में फीचर्स ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है, बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वो ही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ये कितना बड़ा राज है जो भगवान ही समझाते हैं। आते हैं संगम युग पर, हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं, और कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं है, सहज है। बाप पढ़ाकर जिससे हम पावन बन जाते हैं, फिर बाबा साथ ले जाते हैं, और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो, ये जरूर बाबा काम देते हैं, माँ में कम याद करो। तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें लोगों को समझ में आए, हाँ कैसे कैसे लिखें। हमारे जगदीश भाई ने तो इस पर कई किताबें बनाई हैं। यही मुख्य मिस्टेक है, बड़ा घोटाला कर दिया जो बाबा कहते हैं नाम बदल दिया, यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस इरिलीजियस इनसॉल्वेंट बना है। अधर्म आ गया है और कंगाल बन गया भारत, बाबा कहते इसी कारण से। बाप फिर आकर के राजयोग सिखलाते हैं, और राजयोग सिखलाकर क्या करते हैं, भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। जैसे नहीं केवल एक भारत को बना और पूरा हो गया, नहीं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सबकी सेवा करो, तो सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। तो कहते हैं ना, अब क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में भी आशीर्वाद क्या देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये ऐसे आशीर्वाद देते हैं, आयुष्वान भव धनवान भव। तो बाबा ने इंग्लिश शब्द बोला है विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, आपके लंबी आयु हो और आप संपत्तिवान हो एंड प्रॉस्पेरिटी. तो बाबा आशीर्वाद ऐसे नहीं देंगे, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, ऐसे बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि ऐसे बच्चे जीते रहो. क्योंकि देह तो सबको छोड़ना है ना, ऐसे थोड़ी हम ये शरीर में अमर हो जाएंगे. तो सदा जीते रहो, ऐसे बाबा आशीर्वाद नहीं देते. ये तो साधु लोग कहते हैं अमर रहो. अब अमर तो कोई रह ही नहीं सकता, एक दिन तो मृत्यु होगी. तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर होंगे लेकिन अमरपुरी में होंगे. मां भी शरीर छोड़ेंगे लेकिन फिर भी अमर कहलाएंगे, क्योंकि स्व इच्छा से देह छोड़ते. तो इसलिए बाबा कहते अमर तो होंगे जरूर अमरपुरी में, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे होंगे. यहाँ तो अकाले मृत्यु है, बैठे बैठे मर जाते हैं. हाँ, एक व्यक्ति की बताते हैं कि उनको किसी ज्योतिषी ने कहा कि आप तो 90 साल की उम्र तक जिएंगे. तो सोचा 90 साल की उम्र तक मुझे जीना है तो खूब धंधा करो और धंधा करो और धंधा करो और बढ़ाओ. अब 80 साल हो गया, 85 साल हो गया, मैं तो 90 साल तक जीता रहूंगा मुझे ज्योतिषी ने कहा. और एकदम 85 साल में ही वो एकदम उसी समय बेहोश होके मना वो गिर गया और ओम शांति. तो बताओ ज्योतिषी ने कहा 90 साल तक जिएंगे तो 85 में चला गया. सोचा मैं और 5 साल और जीऊंगा, लेकिन बाबा कहते हैं हाँ ऐसे नहीं कि पता चलता है कि कब शरीर छोड़ेंगे. इसीलिए कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं क्योंकि अमर कोई भी नहीं है. तुम बच्चे मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे हो कहेंगे. तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं, बाबा से राय पूछते हैं. हाँ, तो देखो जब बाबा का भी अव्यक्त जो मिलन का पाठ था तो लास्ट में जब आए तो बाबा से पूछा ब्रजमोहन भाई ने कि बाबा इस वर्ष का नाम क्या रखे. और बाबा ने एक ही शब्द क्या कहा, समाप्ति वर्ष, समाप्ति वर्ष. अब समाप्ति वर्ष पर मैंने बाप दादा का पाठ समाप्त होना है तो इसीलिए बाबा ने कहा समाप्ति वर्ष. तो बाबा कहते हैं तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं. बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय लिख भेजे. अभी भी जब मीटिंग होती है ना अप्रैल में तो पहले सबको लिख देते हैं आप अपने अपने विचार भेजो कि क्या हम इस साल की थीम रखें, क्या हम नई कोई नई बात हम सुनाएं मीटिंग में. तो सबसे विचार पूछते हैं. तो बाबा भी कहते हैं कि बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय लिख भेजे, फिर भल इकट्ठे भी हो वो राय इकट्ठे करके फिर सुनाएंगे. राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है, 2-3 हजार खर्चा बच जाए. इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं, वहां पे थोड़ा धन बच जाएगा. क्योंकि एक एक फोन करेगा ये करेगा उस समय तो नहीं होगा ना, तो इसलिए पहले से ही राय भेज देते हैं तो थोड़ा पैसा और बच जाएगा. तो 2-3 हजार में तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं. उस समय तो सस्ता था ना, 2-3 हजार में 2-3 सेंटर खुल जाते, 1 हजार में 1 सेंटर खुल गया. गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर. तो तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट किसमें नहीं होना चाहिए. ज्ञान सुनाने में तो बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, सेवा बहुत करो, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसमें तुम बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन की बातों में, सूक्ष्म वतन की बातों में बहुत इंटरेस्ट नहीं रखो. ये कैसे होता है, क्या होता है, कैसे संदेश देते हैं, कैसे बाबा सुनाते हैं, कैसे ये कैच करते हैं, बाबा कहते ज्यादा नहीं सोचो. तो तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए. ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है कि ये सूक्ष्म वतन वासी है. इनों का बीच में थोड़ा पार्ट है, केवल संगम पर ही ये पार्ट है सूक्ष्म वतन का, जिसमें ब्रह्मा का सबसे बड़ा रोल है, इसीलिए वो तीनों में सबसे बड़ा हो गया। फिर विष्णु तो हमारे लिए लक्ष्य है, और शंकर फिर विनाश के लिए, वो तो सब इस संगम के समय का ही है। यही फिर ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बनता है। तो इनों का बीच में थोड़ा पार्ट है, तुम जानते हो, तुम मिलते हो, बाकी तुम जानते हो, सॉरी तुम जाते हो वतन में, तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं। वह अव्यक्त बाप दादा से मिलते हैं, शिव बाबा कैसे ब्रह्मा द्वारा बच्चों से मिलते हैं अव्यक्त रूप में। बाबा कहते हैं यहाँ तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं, कोई कोई आकर रोते भी हैं। भक्ति मार्ग में तो ये पहले बहुत होता था, ब्राह्मण के तन में वो आत्मा आती थी, अब शरीर छोड़ चुके हैं लेकिन वो ब्राह्मण के तन में आती थी, फिर वो तो रोते भी थे, तो कोई कोई आकर रोते भी हैं, और कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। ये सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे, कपड़ा आदि देते हैं, उनको उस आत्मा की जो शरीर छोड़ के गया उनकी कोई इच्छा होगी, वो इच्छा ब्राह्मण को देकर वैसे समझेंगे उसकी इच्छा पूरी हुई। तो कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे, अब शरीर तो वो खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन, कौन पहनेगा, वो तो ब्राह्मण ही पहनेगा। तो तुम्हारे पास वो रसम नहीं है कि फिर वो ब्राह्मण के तन में वो आत्मा आए और उसको उसकी इच्छा पूरी कराए। वो तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास ये रसम नहीं है, रोने आदि की भी बात नहीं है, तो ऊंचते ऊंच बनना है, वो कैसे बने, मुख्य बात यही है, ऊंचते ऊंच हमें बनना है तो कैसे बने। जरूर बीच में संगम युग है तब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बात है, परमात्मा कौन है, ये एक बात सिद्ध कर ली तो बाबा कहते वो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बात है। भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं, वही आकर अपना सत्य परिचय देते, क्योंकि लोग पूछेंगे ना आपने ये परिचय आप जो दे रहे हैं आपको किसने बताया, तो यही कहेंगे ना परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, तो भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे जब उनको पता चल जाएगा यही सत्य है, तो बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है, पिछाड़ी में क्या क्या होना है वो भी देखेंगे, अभी मत पूछो क्या होगा। बाबा कई बार कहते हैं वेट एंड सी, देखो देखते चलो, अपना पुरुषार्थ करते रहो, पूछो नहीं। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में क्या क्या होना है ये भी देखेंगे, लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ। भारत में ये नहीं होगा, भारत में तो सिविल वॉर, गृह युद्ध का गायन है, रक्त की नदियां बहेगी यहाँ भारत में। हाँ भारत में तो ये, भारत में तो खास कहते हैं एटम बॉम्ब भारत में है, लेकिन पहले भारत कभी नहीं छोड़ेगा, पहले युद्ध कभी नहीं शुरू करेगा, अपना सेल्फ डिफेंस करेगा लेकिन भारत कोई बॉम्ब नहीं गिराएगा। तो यहाँ क्या होगा, बाबा कहते हैं यहाँ पर गृह युद्ध होगा, खून की नदियां बहेगी और उसके बाद दूध घी की नदियां बहेगी। तो बाबा कहते हैं पहले मौत है उस तरफ, पहले मौत है पश्चिमी दुनिया में, तो पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदियां बहेगी। पहले पहले धुआं विलाज से निकलेगा, विनाश का धुआं, बाबा कहते पहले पहले विलायत से निकलेगा। डर भी वहां है, भारत में डर नहीं है किसी को कि बम हमारे ऊपर गिरेगा, लेकिन विदेश में तो बहुत डर है कि कहीं कभी भी बम हमारे ऊपर गिर सकता है। डर भी वहां है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। तो ये भी बताना है कि किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। अविनाश कैसे होगा, बाबा ने थोड़ा बहुत तो बता दिया, बस आगे बाबा कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो। हाँ, बाकी ये जरूर बताना है कि किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है, तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप के याद की, ये है मुख्य बात, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था माम एकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कल पहले भी भगवान ने यही कहा था माम एकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा, डीटीज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियनिज्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए ना। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं, ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए, पहले मुख्य मुख्य तुम्हारे, हाँ बाबा कहते हैं तो ये डीटीज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म। तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं, ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं, पहले मुख्य मुख्य पहले डीटीज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है, अनेक अनेक धर्म अनेक मते हो जाती है। अभी तो ये झाड़ जर्जरी भूत हो चुका है, तो अनेक धर्म अनेक मते हो जाती है, यह एक धर्म एक श्री मत से स्थापन होता है। अब अनेक हो गया है, अभी इसका तो विनाश चाहिए, फिर एक धर्म एक श्री मत से स्थापन होता है। द्वैत की बात ही नहीं है, बस एक, वो एक परमात्मा आकर के एक श्रीमत देते हैं, तो द्वैत की तो बात ही नहीं है। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए, याद भी करना है, खुशी में भी रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं तो तुम अनुभव से कहते हो, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं तुम अनुभव से कहते हो, तो ये जैसे ये शुद्ध अहंकार है, शुद्ध अहंकार, अशुद्ध अहंकार नहीं है, शुद्ध अहंकार है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए, और कहीं बुद्धि क्यों जाए, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं तो हमारी बुद्धि और कहीं नहीं जानी चाहिए। जबकि हम विश्व का मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती है, निश्चय में कहां संशय है। हाँ, क्यों नहीं रहती है, बाबा कहते हैं अगर कोई अगर नहीं रह नहीं है खुशी नहीं है तो क्या सिद्ध होता है कि निश्चय में कहीं कमी है, नहीं तो बाबा कहते कितनी खुशी रहनी चाहिए। जबकि हम विश्व का मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती है, या निश्चय में कहां संशय है इसलिए खुशी नहीं रहती। बाप में संशय तो नहीं लाना चाहिए ना, बाबा कहते बाप में तो संशय नहीं लाना चाहिए, माया संशय में लाकर भुला देती है। तो बाबा ने समझाया है माया कैसे धोखा देती है, बाबा ने समझाया है माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है, इसलिए दिखाते सूरदास ने आंखें ही फोड़ दी। तो तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं आंखें फोड़नी है, ये माया धोखा देती आंखों से, लेकिन इन आंखों को सिविल बनाना है। तो बाबा ने समझाया है माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो क्या होता है, अच्छी चीज देखेंगे तो बित बित करते रहेंगे। गुलाब जामुन देखा बस एकदम मुख में पानी आ जाएगा और एकदम खा लेंगे, तो बित बित कर कर करेंगी, खाएं हाँ ये खाएं। आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है, मारे मारे हाँ मारे इनको, तो मारने का भी क्यों क्यों आता है संकल्प, क्योंकि आंखों से देखते हैं, देखे ही नहीं तो मारे कैसे, मारेंगे तब जब देखेंगे उसको। आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है, ये सारे विकार का जो कारण तो देह अभिमान है, परंतु वो देह अभिमान में भी आंखों से देखते हैं तब ये सब आता है। आंखों से देखती हैं तब लोभ मोह भी होता है, तो मुख्य धोखा देने वाली है आंखें, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आज की बड़ी सीख कि आंखों पर बहुत नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं कि आंखों को निकाल देना है, न आंखें रहेगी न होगा, बांस न बजेगी बांसुरी, आंखें ही निकाल दो बाबा कहते, ऐसे नहीं करना है। ऐसे भी नहीं कि आंखों को निकाल देना है, तुम्हें तो क्रिमिनल आय को सिविल आय बनाना है, इस दृष्टि को शुद्ध बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरा, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का ही पूरा पुरुषार्थ करना है। जो मेन बात है वो उसमें ही तो पुरुषार्थ करना है, बाकी और बातों में ज्यादा सोच सोच के संशय में नहीं आना है। आपस में राय कर सबको बाप का सही परिचय देना है। वरदान, पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव, है ना। अगर कोई फास्ट स्पीड से गाड़ी चलाता है तो उसको पहले ये ध्यान रखना होगा कि ब्रेक पावरफुल चाहिए, तभी वो फास्ट गति चलाने में चलो हर जाने। पर अगर ब्रेक पावरफुल नहीं है और फास्ट गति चलाई और समय पर ब्रेक नहीं लगा सके तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। इसीलिए फास्ट गति में जाना है तो ये बुद्धि में ब्रेक नहीं फुल स्टॉप ये लगाना बहुत जरूरी है, तभी इस पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकेंगे। तो पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां उस समय की जो अंत के समय की परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए या ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस चाहिए। जिस समय बिखरी हुई बुद्धि हो, कई बातें इम्पोर्टेंट चलो उसमें बुद्धि जाए गई है और एक सेकंड में स्टॉप भी कर सको, स्टॉप करना और होना उस समय जैसे का स्टॉप ब्रेक तो हो जाना चाहिए। जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर लें, यही है यथार्थ योग। स्लोगन, आप ओबीडियंट सर्वेंट हो। अभी सर्वेंट का काम क्या होता है? सदा सेवा पर तत्पर। मालिक जब भी कहे ऐसे नहीं अभी तो मुझे नींद आ रही है मैं नहीं करूंगा। आप ओबीडियंट सर्वेंट हो इसलिए आलस्य नहीं कर सकते हो। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। उसके अंतर्गत जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, वाइट विटामिन्स की इंजेक्शन देते हैं, B12 की इंजेक्शन देते हैं ताकि एनर्जी आए शक्ति आए, तो जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा, ताकत आ जाएगी। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए, संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। बेहद अंत सुहाना बन जाएगा और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। मम्मा की बात, उनकी सॉरी दीदी की विशेषता बताएंगे। आज 11 तारीख है। दीदी सदा निर्भय निडर और निश्चिंत रहती थी, सदा निर्भय निडर और निश्चिंत। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती थी। कोई बड़ी बात भी सुना दे दीदी सुनती थी, ऐसे नहीं कि आए अच्छा ऐसे हुआ क्या ये हुआ क्या, नहीं कभी नहीं। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, निश्चय अटल था, इसलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थितियां आई उसमें सदा निश्चिंत रही। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं किया, सदा प्रसन्न चित रही। कभी उनके चेहरे पर चिंता के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। बाबा का यज्ञ है, बाबा यज्ञ रक्षक है, वो अपने यज्ञ की संभाल स्वयं करता है। इसी निश्चय के आधार से निश्चिंत रही। हम सबको भी ऐसी स्थिति बनानी है। हाँ, बाबा का ये कार्य है। तो और तीसरे नंबर की आज बताएं दीदी की विशेषता, सच्ची पतिव्रता सतीव्रता पिताव्रता थी दीदी। सदा तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से रास रचाऊं, ऐसी एक व्रता होकर सदा एक के ही गुण गाते दीदी जो बाप दादा की आज्ञाकारी वफादार ऑनेस्ट बनकर रही। कभी किसी वस्तु व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुई, कहीं कहां भी उनकी आंख नहीं डूबी। सदा स्वयं को तृप्त अनुभव किया, स्वयं एक नामी और इकोनॉमी का अवतार बनकर रही और दूसरों को भी यही प्रेरणा दी। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद अभी शशि बहन आएंगे। अच्छा कुछ दिन पहले ये सूचना आई थी घाटकों पर कि हमारी सरस्वती बहन उसने 9 तारीख को शरीर छोड़ा। वो बचपन से ज्ञान में थी, घाटकों पर सब जोन मुंबई सेवा केंद्र पर 1999 से 26 वर्ष से समर्पित थी। तो 9 तारीख को सुबह 5:15 बजे अपना पुराना चोला छोड़कर बाप दादा की गोद में गई। इनका और डिटेल तो नहीं आया, लेकिन मैंने घाटकों पर में पूछा तो बताया कि वो बहुत बीमार थी, उसको कई तकलीफ थी, किडनी की भी प्रॉब्लम थी, हार्ट की भी प्रॉब्लम थी। तो उसको पता था कि अब मैं ज्यादा समय नहीं जीऊंगी, तो बहुत शांति से वो आत्मा गई बाबा की याद में। चलो उस आत्मा के प्रति हम सब योगदान देंगे। ओम शांति।